قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین. کتاب مقدس میں سے ہم نے تعلیم پانا شروع کیا تھا ایک مسیحی کی سماجی یا معاشرتی ذمہ داریوں کی بابت، سوشل ریسپانسبلٹیز آف اے کرسچن. اس میں جو چیزیں ہم نے سیکھی میں مختصر طور پر ان کو دہرا دوں. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ فرد اور سماج یا معاشرے کا باہمی تعلق کیا ہے، وٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین اے پرسن اینڈ اے سوسائٹی. ہر ایک انسان کی اپنی ایک الگ انفرادی حیثیت یا پہچان ہے. کوئی بھی انسان اکیلے مکمل زندگی نہیں گزار سکتا، اسے دوسروں کی ضرورت رہتی ہے. سماج یا معاشرے سے مراد انسانوں کا گروہ کی صورت میں، ایک کمیونٹی کے طور پر، ایک گروپ کے طور پر، جماعت کے طور پر رہنا، مل جل کر رہنا، یہ سماج یا معاشرہ ہے. ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہر ایک کا پیشہ مختلف ہے، ہر ایک کا کام مختلف ہے. اور ایک سوسائٹی میں، ایک سماج میں سب لوگ ایک جیسے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، اور ان کی مالی حالت، فائنینشل سچویشن بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ ان پڑھ ہوتے ہیں، کچھ درمیانے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تھوڑا سا پڑھے لکھے، تو مختلف ہوتے ہیں. اور ایک سماج میں یا معاشرے میں یہ بھی ممکن ہے کہ سب لوگوں کا مذہب ایک جیسا نہیں، ان کا جلد کا رنگ ایک جیسا نہیں، ان کی زبان ایک جیسی نہیں، ان کے عقیدے ایک جیسے نہیں ہیں. کسی بھی سوسائٹی کے لیے، کسی بھی سماج یا معاشرے میں اچھی زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کچھ قانون قاعدے ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں جن کا ماننا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس معاشرے میں زندگی اچھے طرح سے گزر جائے. اور پھر جو اس سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے میں انسان بستے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر ذمہ داری ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. اور سب لوگ جب اپنی اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری کرتے ہیں تو تب جا کے معاشرے میں ایک خوشگوار، ایک اچھی زندگی گزرتی ہے. پھر کچھ باتیں ہم نے یہ سیکھی تھی کہ ایک مسیحی کی سماج میں یا معاشرے میں کیا ذمہ داریاں ہیں. ہمیں خدا کی مرضی جان کر معاشرے میں جینا ہے، اس کا حصہ بن کے رہنا ہے. ہم معاشرے سے، سوسائٹی سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. جہاں بھی خدا نے ہمیں رکھا ہوا ہے، یہ خدا کی مرضی تھی. خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اس نے ہماری سکونت کی حدیں مقرر کر رکھی ہیں، اور جہاں خدا ہمیں رکھتا ہے وہاں ہمیں رہنا ہے، اس معاشرے سماج کا حصہ بننا ہے. اور پھر جس سماج میں، جس معاشرے میں خدا نے ہمیں رکھا ہے، ہمیں اس کی خیر چاہنی ہے، اس کی سلامتی چاہنی ہے، اس کی برائی نہیں چاہنی. اس معاشرے، اس سوسائٹی، اس ماحول کو بگاڑنا نہیں ہے ہم نے، اس کی خیر چاہنی ہے، اس کی سلامتی چاہنی ہے، اور اس کے لیے دعا کرنی ہے. اور معاشرے میں جتنے لوگ ہیں، ہمیں لڑنا جھگڑنا نہیں بلکہ سب سے میل ملاپ کے ساتھ رہنا ہے، خوشگوار تعلقات رکھنے ہیں ہم نے. چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، میرے رنگ کا نہیں ہے، میری زبان نہیں بولتا، میرے مذہب کا نہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اچھا سلام دعا کا اچھا خوشگوار تعلق تو قائم رکھنا چاہیے ہمیں. اور پھر معاشرے میں جو میرے علاوہ دوسرے لوگ بستے ہیں، جتنا حق مجھے جینے کا ہے، زندہ رہنے کا ہے، اتنا ہی انہیں بھی ہے. اور ہر ایک مسیحی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کو بھی جینے کا حق ہے، اور ہم ان کے اس حق کا پوری طرح سے احترام کریں. کسی کی جان لینا، کسی کی زندگی ختم کرنا، یہ مسیحیوں کے لیے مناسب اور واجب نہیں ہے. اور معاشرے میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے رشتوں کا اور ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے. کسی کے رشتوں کو ہم رسوا نہ کریں, کسی کے رشتے توڑنے کی کوشش نہ کریں, کسی کے رشتوں میں بگاڑ ڈالنے کی کوشش نہ کریں, فساد پھیلانے کی کوشش نہ کریں. ان کے رشتوں کو, رشتوں میں آپ کوئی بھی رشتہ جوڑ سکتے ہیں, میاں بیوی ہیں, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, اولاد والدین ہیں, کوئی بھی رشتہ ہے خاندان کا, آپ ان رشتوں کو احترام دیں, ان میں بگاڑ ڈالنے کی کوشش نہ کریں, اور پھر ان کی عزت کا خیال رکھیں, کیونکہ رشتوں سے عزت جڑی ہوتی ہے. کسی کے خاندان کی, بھلے وہ آپ کے قوم کا ہے, رنگ کا ہے, نسل کا ہے یا نہیں ہے, آپ کے مذہب کا ہے یا نہیں ہے, آپ اس کی عزت کا خیال رکھیں, رسوا اور ذلیل نہ کریں. اور اس کے بعد جو بڑی خاص بات ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, خدا کا کلام اس پہ بڑا زور دیتا ہے کہ ہم دوسروں کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں ہم ان کا بھی خیال رکھیں, ان کی ملکیت کا احترام کریں. کسی کا گھر ہے, کسی کا پلاٹ ہے, خالی جگہ ہے, کسی کی کوئی گاڑی ہے, سائیکل ہے, کوئی کھلونا ہے, کوئی قیمتی چیز ہے یا سستی چیز ہے, کوئی بھی کسی اور کی ملکیت کوئی چیز ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے. جب وہ پتہ ہے کہ یہ کسی اور کی ہے, یہ میری نہیں ہے, تو پھر ہمیں اس پر اپنی ملکیت جتانے کا حق نہیں ہے. کسی کے گھر پہ, کسی کی زمین پہ, کسی کی جائیداد پہ, کسی کے مال پہ, کسی کے جانور پہ, کسی کی مشینری پہ, کسی کے گیجٹس پہ, کسی کی ٹیکنالوجی پہ, کسی کے گھر کی چیزوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ مسیحیوں کے لیے واجب اور مناسب نہیں ہے. ہمیں کتنا برا لگے گا کہ اگر کوئی ہماری چیزوں میں سے کسی چیز پر قبضہ جما لے, کوئی ہمارے گھر میں اپنی دیوار کھڑی کر لے اور کہے کہ میرا گھر یہاں تک ہے, ہمیں کتنا برا لگے گا. کوئی ہمارے بچوں کے کسی چیز کو جن سے وہ کھیلتے ہیں ان پر اپنا قبضہ جما لے, ہمیں اچھا نہیں لگے گا. تو ہم کیوں دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھیں, ان کا لالچ کریں, ان کو چھیننے کی, اپنا بنانے کی کوشش کریں. جو دوسروں کی ملکیت میں چیزیں ہیں, جو ان کے پوزیشنز ہیں اور جو ان کی حدود ہیں, ان کا خیال رکھیں. آپ کے ناک سے آگے آپ کی حد ختم ہو جاتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جہاں آپ کی ناک ختم ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں پیٹ, سمجھ گئے؟ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ناک جہاں تک ہے وہاں تک آپ کی حد ہے, اس سے آگے سماج ہے, معاشرہ ہے, خاندان ہے, سوسائٹی ہے, کمیونٹی ہے, دوسروں کی حد آ جاتی ہے. آپ اپنے جسم کے اندر, جسم کے ساتھ جو مرضی کرو, لیکن آپ اس سے باہر کسی اور کی زندگی میں, کسی اور کی حدود میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. دوسروں کی حدوں کا خیال رکھیں, دوسروں کی ملکیت کا خیال رکھیں. بعض لوگ آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ ان کے ساتھ زبانی بھی مذاق کرو, ان کے ساتھ جوک کرو. They don't allow you to make fun. وہ اجازت نہیں دیتے, وہ خوش نہیں ہوتے, وہ پسند نہیں کرتے کہ آپ ان کا مذاق اڑاؤ, ان سے کوئی مذاق کی بات کرو. وہ آپ کی حد نہیں ہے, آپ اس کا خیال رکھو. بعض لوگ پسند نہیں کرتے کہ آپ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھو, آپ نہیں رکھو. بعض لوگ پسند نہیں کرتے کہ آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھو, آپ نہیں رکھو. बाज लोग पसंद नहीं करते कि कोई कितनी भी उम्र का है शख्स वो उनको छुए। बाज लोग पसंद नहीं करते, आप नहीं करो। हदों का ख्याल रखो। दूसरों की मिल्कियत में कोई चीज है उसका भी ख्याल रखो, और जो उनकी हद है उसका भी ख्याल रखो। किसी की चार दीवारी में घुसने की कोशिश मत करो। अगर किसी ने कर्जा भी लेना है ना, तो खुदा का कलाम मना करता है कि वो उसके घर में दाखिल ना हो। दरवाजे पे जाए, दस्तक दे और याद कराए कि जी आपने मेरा पैसा देना या चीज देनी है, लेकिन उसको इजाजत नहीं खुदा का कलाम देता कि उसके घर में घुसा जाए। दूसरों की हदों का ख्याल रखें, दूसरों की इज्जतों का ख्याल रखें, दूसरों के मुकाम मर्तबे का ख्याल रखें। भले कोई आपके कितना ही अच्छा अजीज करीबी दोस्त क्यों नहीं है, जब आप अकेले में हैं तो आप उसके साथ जैसे मर्जी बर्ताव करो, वो उसका और आपके बीच का है। जो दो फैमिलीज हैं आपका और उसके बीच में, जैसा भी मजाक है, खुली बातचीत है, मिलना बरतना है, वो प्राइवेट है। लेकिन पब्लिक में, कम्युनिटी में, जब आप लोगों के बीच में हैं तो हदें हैं कुछ। आप ख्याल करें, आप किसी बच्चे को भी ओए तू करके और गाली निकाल के पब्लिक में आवाज दोगे, तो पलट के उसने अगर वैसी ही आवाज दे दी, और उसने अगर यह मुहावरा कहीं से सुना हुआ कि कुएं में जैसी आवाज हम डालते हैं वैसी ही पलट के आती है, अगर उसने सुनी हुई हो यह मिसाल, तो क्या करोगे? हदें, ना सिर्फ मिल्कियत की हदें बल्कि ताल्लुकात में भी हदें, इज्जत में भी हदें, बातचीत में, गुफ्तगू में हदें हैं, फिजिकल होने में हदें हैं, जिस्मानी तौर पे किसी को छूने में, टच करने में, हाथ मिलाने में, गले मिलने में हदें हैं। भले मैं हूं, भले कोई भी है, जब हम किसी खातून के सर पे हाथ रखते हैं तो उसे ड्रैग करके, घसीट कर उसको लंबा खींचने की कोशिश मत करें। बस छू दिया और काफी है। और कई खवातीन को ये प्रॉब्लम भी होता है कि बाल उन्होंने घंटे लगा के बनाए होते हैं, तो बड़ा कुट के प्यार जब मिल दिया जाता है तो उनके बाल खराब हो जाते हैं। अवॉइड इट। हदें हैं, हर एक की हदें हैं। आपके खानदान में आप कुछ भी करो, आपकी हद है, किसी और का काम नहीं है कि बीच में आके अपना नाक घुसेड़ना और कहना कि जी मेरा नाक अब अंदर आ गया तो मेरी हद है इसमें। इसीलिए मुहावरा है कि ऐसे ही किसी काम में नाक नहीं घुसेड़ो। तो दूसरों की मिल्कियत में जो चीजें हैं, भले वो आपके अपने हैं या बेगाने हैं, जब एक समाज में, एक कम्युनिटी, एक मुआशरे में है, उनकी चीजों का भी आपने ख्याल रखना है, उनकी हदों का भी आपने ख्याल रखना है। किसी की हद में ना जाओ, ना अपनी हद छोड़ो। एक शेर का मिसरा ही है, ना किसी की हदों में दाखिल हो, ना अपनी हदों में किसी को आने दो। एक हद है बस, इससे आगे ना आप जाओ ना किसी को आने। जानवरों पर भी मेहरबानी करने का खुदा ने कहा है। मुआशरे में जानवर होते हैं, चाहे वो दुश्मन का जानवर क्यों नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले इस्तिस्ना में से जो तलावत हुई, तेरे भाई का जानवर है तो भी, तेरे दुश्मन का जानवर है तो भी, हमें उस जानवर पर रहम करना है, उसे मारना नहीं। कई लोगों को बड़ा शौक होता है कोई छोटा पपी, कोई बिल्ली का बच्चा, कोई कुत्ते का बच्चा हमें नजर आ जाए। खासतौर पर बच्चों में ये आदत होती है, जो उठते हुए नौजवान बच्चे होते हैं जिनके अभी लड़कपन होता है, वो उस जानवर को पकड़ते हैं, या परिंदों के घोंसलों से जो उनके छोटे बच्चे गिरते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और छोटे जानवरों के गलों में रस्सी बांध कर, या परिंदों को पकड़कर उनको बांध कर उनसे गैर इंसानी सलूक करते हैं। इंसानों को जेब नहीं है कि वो जानवरों से गलत सलूक करें। लिखा है कि अगर जानवर किसी का तो मुश्किल में देखे, फंसा हुआ देखे, गिरा हुआ देखे, तो उसकी मदद कर, इग्नोर मत कर। तो उस मुआशरे में जो जानवर हैं उनका भी ख्याल रखें, उनको मारे नहीं। खुदा ने इस जमीन पर पूरी कायनात में बैलेंस रखा हुआ है, जानवरों के भी काम हैं इस जमीन पर, वो हमारे समाज में हमारे मुआशरे में किसी ड्यूटी पर लगे हुए हैं जो खुद के खालिक ने उनकी लगाई हुई है। अगर किसी जानवर को आप उसकी खुराक नहीं डाल सकते, उसको पानी नहीं पिला सकते, उसको किसी मुश्किल से निकाल नहीं सकते, तो हमें हक नहीं है कि हम उनकी मुश्किलात में इजाफा करें। किसी का जानवर देखो तो उस तक पहुंचाओ, अगर तुम्हें पता नहीं है कि वो किसका है उसको अपने पास रखो और खबर फैलाओ कि भाई किसी का जानवर हमें मिला है, जिसका हो वो आकर ले जाए। ये बात मिल्कियत के हवाले से भी है कि अगर किसी को कोई चीज पड़ी हुई किसी की मिल जाए तो वो फौरन से उसे इस्तेमाल ना कर ले, अपने इस्तेमाल में ना ले आए, उसे संभाल के रखे और इस बात का चर्चा करे कि भाई किसी की कोई ऐसी चीज अगर गुम हो गई है तो वो राबता करे। तो जानवरों पर भी मेहरबानी करने है हमने इस जमीन पर रहते हुए, और दूसरों के काम में बेजा मुदाखलत नहीं करनी है। माशरे में कई लोग होते हैं ना, उनकी आदत होती है कोई काम काज नहीं, जिंदगी से या तो रिटायर हो चुके होते हैं अपनी जॉब में, जॉब से कोई काम धंधा नहीं होता, तो वो मोहल्ले में बाहर बैठ जाते हैं, गली में बैठ जाते हैं, उन्होंने हर एक को आते जाते टोकना, हर एक के घर के बच्चों की उसने खबर रखनी होती है, हर एक घर के खानदान की औरतों की उसने खबर रखनी होती है कि ये कौन सी दुकान पर जाती है, क्या सामान लेके आती है, कैसी बन के जाती है, दूसरों के बच्चों पर बातें करनी है, लोगों के कामों में मुदाखलत करनी है। दूसरों के काम में मुदाखलत ना करें। कोई मैकेनिक है, कोई मिस्त्री है, कोई मजदूर है, कोई टेक्नीशियन है, कोई नर्स है, कोई किसी तरह का भी प्रोफेशन है उसका, कोई किसी कंपनी में काम करता है, कोई सुपरवाइजर है, फोरमैन है, इंजीनियर है, लैंड सर्वेयर है, एक्सियन है, कोई भी काम है आपका, दूसरों को हक नहीं बनता कि आपके काम में मुदाखलत करें, तो आप भी ना करो, उसको काम करने दो, वो काम कर रहे हैं उसको करने दो। दूसरों के कामों में बेजा मुदाखलत ना करें। थसलुनीकियों के नाम दूसरे खत में तीसरा बाब 11वीं से 12वीं आयत के कामों में बेजा मुदाखलत ना करो, दूसरों के कामों में टांग ना अड़ाओ, उनको पता जैसे करना है। कोई अपने घर में फैसला करना होता है तो दूसरे आने जोर लगा रहे होते हैं, नहीं इनको ऐसे करना चाहिए था, भाई वो घर वाले आपसे ज्यादा फिक्रमंद हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, उन्होंने अपने कैपेसिटी के मुताबिक, उन्होंने अपने चादर के मुताबिक, उन्होंने अपने हालात को सामने रखते हुए किसी काम में फैसला करना है, कोई काम करना है, हमारी मर्जी से वो नहीं चलेंगे। या तो आप इजाजत दो सारे जहान को कि भाई जब मेरी जिंदगी में मैं कोई काम करने लगूं तो आप भी आ जाओ, मुझे मुदाखलत कर दो, मुझे टोको, मुझे रोको, मुझे आके सलाहें दो, सबकी मानो। फिर अगर आप सबको इजाजत नहीं देते कि वो आपके काम में मुदाखलत करें तो आप भी किसी के काम में मुदाखलत ना करें। मुआशरे में अगर हर बंदा दूसरे के काम में टांग अड़ाना शुरू कर देगा तो लोग झगड़ेंगे, लड़ाइयां होंगी, काम नहीं होगा। सो हमें समाज में रहते हुए दूसरों के काम में बेजा मुदाखलत नहीं करनी, और फिर समाज में काबिले कबूल बातों की तदबीर करनी है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, उसमें कुछ चीजें कबूल की जाती हैं, कुछ चीजें कबूल नहीं की जाती। कभी सुना है आपने, देखा भी होगा, अभी टीवी पे शायद एक न्यूज चैनल ने ये दिखाई थी रिपोर्ट कि पाकिस्तान में एक मसीही खानदान के बुजुर्ग की डेथ हो गई, तो उन्होंने आगे जनाजे के आगे बैंड बाजा वो बजाया और पैसे फेंके। देखा किसी ने न्यूज में, सुना कभी ऐसा किया? मैंने वो रिपोर्ट देखी थी, वीडियो बनी और फिर उन्होंने टीवी पे भी एक न्यूज चैनल ने चलाई है, معاشرے میں قابل قبول ہے کہ آپ جنازے کے سامنے بینڈ بجاؤ اور شادی کی طرح پیسے پھینکو؟ قابل قبول ہے؟ ہمارے پاکستانی ہندوستانی معاشرے میں سماج میں یہ چیز قبول نہیں کی جاتی. ہاں یورپ میں جب آپ کے بچے 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ انہیں روک ٹوک نہیں سکتے. وہ جس کے ساتھ رہنا چاہیں وہ رہیں, جو کام کرنا چاہیں وہ کریں, ماں باپ ان کو روک ٹوک نہیں سکتے. ہمارے معاشرے میں ہم اجازت دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ جیسی زندگی گزارنا چاہیں مرضی گزاریں, وہ جس کے ساتھ مرضی رہنا چاہیں رہیں. ہمارے ہاں یہ قابل قبول ہے؟ نہیں ہے. یورپ میں ہو سکتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں, ہماری اخلاقیات یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم ایسی حرکتیں کریں, ایسے کام کریں. ہمارا معاشرہ ہمارے لباس پہ حد ٹھہراتا ہے کہ خاتون ہو یا مرد ہو, ایک مخصوص حد سے کم لباس پہن کے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اس معاشرے کی, اس سوسائٹی کی اس حد کو قبول کریں. جو چیزیں, جو باتیں اس معاشرے میں قابل قبول ہیں ان کی تدبیر کرو. خدا کا کلام کہتا ہے جو چیزیں سب میں قابل قبول ہیں, سب کے نزدیک قابل قبول ہیں, ان کی تدبیر کرو, ان سے بغاوت کرنے کی کوشش مت کرو. ہمارا سماج ابھی تک لڑکے اور لڑکی کی اپنی مرضی سے گھر سے بغاوت کر کے شادی کو قبول نہیں کرتا. ہم اسے بہت غلط سمجھتے ہیں. اگرچہ خاندانوں میں لوگ کرتے ہیں, پھر بزرگوں کو, ماں باپ کو مجبور ہو کر قبول کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ عمل, یہ فعل ہمارے سماج میں سب کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اس لیے خاندانوں میں نوجوانوں کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو اس بات میں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر کریں. ہم وہ کام نہ کریں کہ جو ہمارے ماں باپ کو قبول نہیں ہے, جو ہمارے معاشرے میں قبول نہیں ہے, جو ہمارے ماں باپ کا شملہ گرا دے, جو ان کی عزت کو دنیا میں روڑ دے, خراب کر دے, ختم کر دے. ہم وہ قدم نہ اٹھائیں, وہ کام کریں جو سارے سماج میں قابل قبول ہیں. سارے کام تو قابل قبول نہیں ہوتے سب کے نزدیک, لیکن کچھ سٹینڈرڈ چیزیں ہیں. شادی بیاہ کے معاملات, خوشی غمی کے معاملات, سب کے نزدیک قابل قبول جو باتیں ہیں ان کی تدبیر کریں, ان کے لیے کوشش کریں, اور جو سماج میں برائی سمجھی جاتی ہیں باتیں ان سے پرہیز کریں. سماج میں جو چیزیں قابل قبول ہیں ان کی تدبیر کریں. دوسروں کے لیے تکلیف یا ٹھوکر کا باعث نہ بنیں. ہم سماج میں رہتے ہوئے ایسا کام نہ کریں جو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تیرا کھانا تیرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو وہ تیرے لیے گناہ ہے. کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے دوسروں کو ٹھوکر لگے, دوسروں کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے, دوسروں کو پریشانی ہو. یہ صرف ٹھوکر وہ نہیں کہ راستے میں پتھر رکھ دیا کہ ٹھوکر لگے گی, صرف یہ نہیں کہ راستے میں پانی گرا دیا اور زمین جل تھل کر دی اور وہاں مڈ یعنی کیچڑ پیدا کر دیا کہ لوگوں کو چلنے میں پھسلن ہو جائے. یہ صرف وہ تکلیف اور ٹھوکر نہیں جو جسمانی ہے, یہ وہ ہے جو ایمان کو ہے, جو سوچ کو ہے, جو نظریات کو ہے. وہ بھی ٹھوکر نہ کھلاؤ کسی کو. ہم اپنے کاموں سے کسی کو ٹھوکر نہ کھلائیں. میں بہت امیر ہوں, میں اپنے بچے کا برتھ ڈے دہلی میں سب سے مہنگا ہوٹل کون سا جی؟ بڑے لوگوں کو پتا ہوگا, बड़े बड़े लोग जो पार्टियों में जाते हैं दोस्तों के साथ, कभी होटल में गए होंगे, मैंने सुना कि 20 दिनार का भी एक जगह पे बुफे होता है, 20 BD पर पर्सन। पाकिस्तानी कितने बनते हैं जी? 5 से 6 हजार रुपया एक बंदे का वहां पे पर हेड कॉस्ट है। मैं वहां पे पूरी कलीसिया की और बहरीन में जितने मेरे जान पहचान के लोग हैं सबकी दावत कर देता हूं, अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं, पूरी कलीसिया को इनवाइट करता हूं, और किसी और के बच्चे का दिल करता है कि मेरा भी बर्थडे ऐसे ही मनाया जाए। लेकिन वो एक ऐसे बाप की औलाद है कि जिसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो उसकी तालीम, उसकी पोशाक, उसकी खुराक और घर के अखराजात को पूरा करने के बाद उसके लिए एक केक खरीद सके। तो मैंने अपने अमल से उस खानदान को ठोकर खिला दी, मैंने उस बच्चे के दिल को ठेस लगा दी, मैंने अपनी दौलत का सहारा लेकर उड़ाया है गरीबों की मोहब्बत का मजाक। ताजमहल के बारे में किसी ने शेर कहा था, एक शहंशाह ने अपनी दौलत का सहारा लेकर उड़ाया है गरीबों की मोहब्बत का मजाक। क्या समझते हैं कि हमें अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं? उसी को थी जिसने ताजमहल बनवा दिया अपनी बीवी के मौत पर। क्या उन मजदूरों को, उन मिस्त्रियों को, उन ठेकेदारों को अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं थी जिन्होंने बनाया? पैसा जरूर दिया शहंशाह ने, उसमें मोहब्बत और उसमें खूबसूरती, उसमें इंफरादियत तो डाली उन कारीगरों ने। हम अपनी दौलत का सहारा लेकर गरीबों का और जो हमसे लेवल में, फाइनेंशियल लेवल में, मुआशी तौर पर हमसे निचले सतह पर हैं, हम अपनी दौलत से उनके लिए ठोकर का बायस बनते हैं, उनकी दिल आजारी करवाते हैं। हम शादी ब्याह पे, सालगिरह पे, एनिवर्सरीज पे, अपने बहुत सारे फंक्शंस में इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि हम गरीबों के लिए ठोकर और तकलीफ का बायस बन जाते हैं। हम दूसरों के लिए एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। हर बेटी का शौक होता है कि मुझे डुप्लेक्स से तैयार होना है, मुझे बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, मुझे डिजाइनर ड्रेसेस लेने हैं, मुझे डिजाइनर ज्वेलरी लेनी है। हर बेटी का शौक होता है, करोड़पति अपना ये शौक पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब माँ बाप हैं वो अपनी बेटी के लिए ये शौक पूरा नहीं कर सकते। हम मुआशरे में ये ख्याल रखें, मसीहियों का ये बिल्कुल काम नहीं कि वो अपनी दौलत से, अपने वसाइल से, अपनी बरकत से दूसरों के ऊपर धौंस जमाने के लिए, मुआशरे में अपना मुकाम ऊंचा करने के लिए दूसरों को शर्मिंदा करें, उनको जलील करें, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करें, उनके लिए ठोकर का वसीला बन जाए। खुदा ने हमें अगर दौलत दी है तो उसे एहतियात से इस्तेमाल करना, इसी के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना, दूसरों के लिए, दूसरों को ना चढ़ाएं। अपनी दौलत से हम दूसरों को ना चढ़ाएं। और अगर खुदा ने मुझे कोई खूबी, कोई फन, कोई हुनर दे दिया हुआ है ना, जो बड़े खान साहब होते हैं उनको कहे ना महफिल में, जी खान साहब कुछ हो जाए, कुछ आइटम थोड़ी सी आप गुनगुना दें, तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी? गला खराब है मेरा, जरा आज कल ना गला ठीक नहीं है, बड़े पा रहा हूं तो पहले। और कईयों का ये सेवा होता है, वो कहते हैं पीछे जो तुम में से कोई इस काबिल नहीं है, जितना इल्म मुझे है तुम में से किसी को नहीं है, जितनी काबिलियत मुझ में है तुम में से किसी में नहीं है, जितना टैलेंट मुझ में है, जितना फन मेरे पास है, जितनी महारत मेरे पास है तुम में से किसी के पास नहीं है। हम दूसरों को तकलीफ देते, उनको ठोकर खिलाते, उनको नीचा कर रहे हैं। समाज में हम इस तरह से जीना ही हमारी जिम्मेदारी है कि हम ना दूसरों के लिए ठोकर का बायस बने, ना उन्हें तकलीफ पहुंचाए। और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ करें, बड़े लोग अच्छा काम करते हैं, हो सकता है कि वो गैर मसीही हो, अब्दुल सतारीदी गैर मसीही शख्स था, लेकिन उसकी खिदमत, उसका काम इंसानियत के लिए, उसके खिदमत को सलाम, उसके जिंदगी में एक बड़ी गवाही है कि उसने किसी रंग मजहब और नस्ल का फर्क नहीं किया, उसने इंसानियत को सामने रखा और उनकी खिदमत की। मदर टेरेसा है, वो तो चलो हमारे यहां मजहब थी इंडिया में, लेकिन हिंदुस्तान की गैर मसीही हुकूमतों ने उसे ऑनर किया है, वो आज भी उसका नाम एहतराम से लेते हैं। मुआशरे में, सोसाइटी में, समाज में जो लोग अच्छा काम करते हैं, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह हमारा कुछ लगता है या नहीं लगता, ये हमारे हम मजहब है या नहीं है, ये हमारा हम अकीदा है या नहीं है, ये हमारी जुबान बोलने वाला है या नहीं है, ये हमारे देश का है या नहीं है। जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए, घर से शुरू कर देनी चाहिए ना तारीफ। अगर घर में कोई आपका खानदान का शख्स को अच्छा काम करता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बेगम अच्छा खाना बनाती है, कह देना चाहिए थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और अगर शोहर आपके लिए मेहनत करता, कमाई करता है, तो आप उसको शुक्रिया कह सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं। ये आम बात है कि जो बहन का शोहर होता है ना, वो एक खातून के लिए सबसे आइडियल शोहर होता है। मेरी बहन को बड़ा अच्छा शोहर मिला हुआ है, वो बड़ी किस्मत वाली है, बड़े नसीबों वाली है। एक मेरा है, खुदा के वास्ते इस सिचुएशन से निकल आओ। वो आपके लिए मेहनत करता है, वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी अहलियत के मुताबिक, अपनी काबिलियत के मुताबिक बेस्ट है। खुदा को गलती लगती है, खुदा से भूल चूक हो जाती है, पुलेखे लगते हैं खुदा को। जब उसने आपकी जिंदगी में उसको शामिल किया है तो वो गलती से नहीं हुआ, हादसे के तौर पर नहीं हुआ, पुलेखे से नहीं हुआ। खुदा ने आपके लिए उसी को दी बेस्ट जाना, वो आपकी जिंदगी में शामिल किया। तारीफ कर देनी चाहिए, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, मैं खुश हूं आप में। औलाद अपने मां बाप को हमेशा कहती है साढ़े लिए तुसा कीता की, खुदा के लिए उन्होंने आपको पैदा किया, खुराक खिलाई, तालीम दिलवाई, आपने नहीं पढ़ाई की तो आपकी गलती है। उन्होंने आपके लिए मेहनतें की, अपना आराम कुर्बान किया, आपको कुछ बनाने की कोशिश की, आप उसके मुताबिक बन नहीं पाए, ये उनकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आप उनकी तरबियत में अच्छा नहीं बन पाए, आप उनकी मेहनतों का अच्छा सिला नहीं दे पाए। उन्होंने आपके लिए रहने का घर बना दिया, काफी है, क्योंकि उनके पास रहने का घर नहीं था, उन्होंने मेहनत से बनाया। उन्होंने आपके लिए घर बना दिया, अब आपको घर की बनाने की फिक्र नहीं, अब आप अपने बच्चों के लिए कुछ बना सकते हो। तुसा साडे लिए कीता की, आपने हमारे लिए छोड़ा क्या है भैया? आपको तालीम दिलवाई, आप अच्छी नौकरी कर रहे हो, आप अच्छी जॉब कर रहे हो, आप अच्छा आप कारोबार कर रहे हो, यही उन्होंने आपके लिए किया है। शुक्रगुजार हूं उनके। और मुआशरे में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको शुक्रिया कहें। एक मूवी थी ना मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो सफाई करने वाले बंदे को जाके गले लगाता है और उसको थैंक यू बोलता है कि आप अगर ये सफाई ना करें तो यहां इतना गंद हो कि इंसानों से चलना फिरना उठना बैठना वहां मुश्किल हो जाए। जो आपके गली मोहल्ले में सफाई करने वाले हैं, आप उनको उनकी तारीफ करें, अप्रिशिएट करें, शुक्रिया भाई आप हमारे मोहल्ले को साफ रखते हो। हम लोग झाड़ू लगाना, सफाई करना, कचरा उठाना, फेंकना, उसको मैनेज करना मायूब समझते हैं। वो शख्स जो आपके मुआशरे में आपका गंद साफ कर रहा है उसकी तारीफ तो बनती है। कभी कोई 5 रुपए 10 रुपए सफाई करने वाले को देखो तो उसको दे दिया करो थैंक यू, और देखना उस एक बार देने के बाद वो आपके घर के इर्द गिर्द अच्छी सफाई करेगा। एप्रिसिएशन, अगर आप उसको गालियां दोगे और म्यूनिसिपैलिटी को शिकायतें करोगे, ये बंदा आता नहीं, सफाई नहीं करता, ये बिल्कुल खराब है, चल इधर इंज कर, इधर इंज कर, इंज कर, इंज कर, वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप जा रहे हैं पैदल रास्ते में, आपकी जूती की सिलाइयां खुल गई हैं, सामने आपको एक कॉबलर्स शॉप, एक मोची की दुकान नजर आ गई, वो 2-3 रुपए लेगा और आपकी जूती मेंड कर देगा, آپ اس کو شکریہ ادا کرو کیونکہ اس نے آپ کو سہولت مہیا کی، اس نے آپ کے لیے اچھا کام کیا۔ جو لوگ معاشرے میں اچھا کام کرتے ہیں، جن کی خدمتوں سے آپ سہولتیں اٹھاتے، فیض یاب ہوتے ہیں، فسیلیٹیٹ ہوتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرو۔ گھر سے معاملہ شروع کریں اپریشیٹ کرنے کا، گھر سے تعریف کرنا شروع کریں۔ معاشرے میں جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کی تعریف کریں، جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کی تعریف کرو۔ معاشرے میں، سماج میں راہ چلتے کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، ویل ڈن، شاباش، کیری آن۔ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کو برا کہیں تو کیسا لگتا ہے؟ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں لوگ آپ کی تعریف کریں تو پھر خوشی ہوتی ہے، کام میں اور محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیے، اور بھی کئی باتیں ہیں جو آئندہ ہفتوں میں ہمیں پھر سیکھنے کو ملیں گی۔ دعا کریں اور خدا سے یہ توفیق مانگے کہ خدا تو مجھے فضل دے کہ میں اس معاشرے میں ایک اچھے مسیحی کے طور پر زندگی گزار سکوں۔